लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत फादर डेविड सोसन बागे के साथ हुई वार्ता के दूसरे भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। कलीसिया में एक साथ चलने का एक विशेष महत्व है। कलीसिया की शुरुआत ही एक समुदाय के रूप में हुई है, जिसका संचालन पौत्र आत्मा करते हैं। प्रेरित चरित में हम कलीसिया की एकता का एक सुंदर उदाहरण पाते हैं। कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस ने सिनट का आह्वान कर कलीसिया में एक साथ चलने का प्रोत्साहन दिया है। इस आह्वान के आधार पर सबसे पहले धर्म प्रांत स्तर पर कलीसिया की एकता का मूल्यांकन किया जा रहा है, जहां पल्ली समुदायों में विश्वासियों को एक साथ चलने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि पल्लियों में सामुदायिक भावना नहीं होने पर लोगों में गिरजा जाने या पल्ली के क्रियाकलापों में भाग लेने की रुचि घट जाती है और वे धीरे धीरे अपने आप को सब कुछ से दूर कर लेते हैं। इटली के कलाब्रिया प्रांत के शहीद संत थियोडोर पल्ली के पल्ली पुरोहित, खूंटी धर्म प्रांत के शदे फादर डेविड सोसन बागे, जो डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के बाद दूसरी पढ़ाई करते हुए पल्ली में अपना योगदान दे रहे हैं, उनका कहना है कि पल्ली समुदाय को मजबूत बनाने के लिए उसे अपना समझना, पल्ली का अंग होना और ईश्वर के वचन को सुनना आवश्यक है, तभी हम कलीसिया की एकता को मजबूत कर पाएंगे। तो लीजिए प्रस्तुत है फादर डेविड सोसन बागे के साथ एक वार्ता। उनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा ने सिनट का आह्वान किया है, तो सिनट की तैयारी पल्ली स्तर पर किस तरह से हो रहे हैं?
मेरे पल्ली में जो सहयोगी हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरे मुझे भी बहुत लोग सहयोग दे रहे हैं। इस सिनत के लिए मैंने सिनत काल में हर एक रविवार को मैं जो पोप बेनेडिक्ट द्वारा दस्तावेज दी गई थी जो वेरबुम डोमिनी का महत्व पर बतलाए हैं, उसी को मैं हर एक रविवार को 5 मिनट के लिए मैं उनको कैटेकिज्म देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि बाइबल के द्वारा ही हम लोग एक साथ सिनट का जो महत्व है, सिनट का जो मतलब है, सिनट का जो अर्थ है, उसको हम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त के वचन और बाइबल में जो दी गई है उस विशेष करके स्तोत्र ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं कि आपका वचन प्रभु मेरे पथ चिन्ह के लिए एक रोशनी है, उसी के आधार पर मैं उनको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि सिनट का अर्थ मतलब कि एक साथ चलना है ना। और जब तक हम लोग इस पवित्र वचन को, बाइबल को हम लोग नहीं समझ पाएंगे, तो मेरे लिए शायद और सबके लिए शायद एक साथ हम लोग नहीं चल पाएंगे। जिस सिनट का जो मतलब है इसे उसको हम लोग नहीं अमल कर पाएंगे, इसलिए मैं हर एक रविवार को मैं उनको कैटेकिज्म देता हूँ और सिनट के बारे में समझाता हूँ। और सिनट काल में मैं गांव-गांव चला जाता हूँ, विशेषकर सुदूर क्षेत्रों में, विशेषकर बूढ़ा बूढ़े लोगों से मिलने के लिए, उनके पौत्र कुमनन पहुंचाने के लिए, और मेरे पारिस में दूर दूर में विश्वासी रहते हैं, इसलिए मैं जैसे हमारे छोटनागपुर क्षेत्र में जैसे विशेष काल में, विशेषकर कलीसिया के काल में, आगमन के काल में हम लोग जैसे दूर दूर क्षेत्र में जाकर मिसा करते हैं, वैसे में मैं यहाँ पर मिसा करने के लिए जाता हूँ और उनसे मिलने के लिए कोशिश करता हूँ, जिससे कि हम लोग जो पारिस और लोगों के साथ हम लोग एक प्रकार का अच्छा रिलेशनशिप हो और रिलेशनशिप बना करके हम लोग एक साथ पल्ली को एक एकता में लाए और एक साथ हम लोग चल पाए, जो सिनट को और मतलब को हम लोग अमल कर पाए।
तो आप हमारे ख्रिस्ते भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
ख्रिस्ते भाई बहनों को मैं यही संदेश मैं देना चाहूंगा कि जो विशेष करके पोप फ्रांसिस द्वारा बताई जा रही है उनको हम लोग अमल करें, और हम लोग अपने क्रिश्चियन आइडेंटिटी को जो बपतिस्मा के द्वारा हमें मिली है उसको हम लोग अधिक से अधिक समझें, और जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ हम लोग जुड़े रहें, और जुड़ करके ही हम लोग एक साथ आगे बढ़ पाएंगे, एक साथ हम लोग ख्रिस्ती जीवन को और फ्रूटफुल बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। इसलिए मेरी शुभकामना है कि जितने भी सुपाए हैं वो लोग हम लोग एक साथ चलने के लिए हमें प्रोत्साहित करें और एक दूसरे को हम मदद करें।
धन्यवाद डेविड, आपको बहुत धन्यवाद आपके इस बहुमूल्य समय के लिए हमारे साथ जुड़ने और अपने सुंदर बातों को, सुझावों को और सलाहों को हमारे पास रखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपके मिशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
मसीहा तू ही है महान, दे दे हमें प्रभु वरदान।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका बोझिल संबंध, लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, दरअसल हर इंसान की अपने लाइफ पार्टनर को लेकर एक सोच होती है। जब उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि उसका पार्टनर उस सोच के अनुरूप नहीं है, तो वह व्यक्ति शादी से बाहर उसकी तलाश करने लगता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि संबंध में यह बदलाव स्वाभाविक है। शादी के शुरू के सालों में पति पत्नी एक दूसरे के प्रति जो खिंचाव महसूस करते हैं, वह समय के साथ खत्म होता जाता है और तब शुरू होती है रिश्तों में उकताहट। आर्थिक, पारिवारिक और बच्चों की परेशानियां इस उकताहट को बढ़ावा देती हैं। फिर इस उकताहट को दूर करने के लिए पति पत्नी बाहर कहीं सुकून तलाशते हैं। यहीं से विवाहेतर संबंध की शुरुआत होती है। एक खोज से पता चलता है कि अलग अलग लोगों में इन संबंधों के अलग अलग कारण होते हैं। किसी से भावनात्मक जुड़ाव, सेक्स लाइफ में असंतुष्टि, वक्त के साथ आपसी संबंधों में प्रेम की कमी, अपने पार्टनर की किसी आदत से तंग होना, एक दूसरे को जलाने के लिए ऐसा करना विवाहेतर संबंधों के कारण होते हैं। ऐसे पुरुष और महिला को चाहिए कि वे किसी भी तरह के भावनात्मक लगाव से न जुड़ें। इस प्रकार के रिश्ते को समाज कभी स्वीकार नहीं करता। बेहतर होगा ऐसा करने से पहले जरा सोच लें कि वे किसी के पति या पत्नी हैं, किसी के माता या पिता हैं। इसलिए यह उन्हें शोभा नहीं देता। इसका बुरा असर उन पर ही नहीं, उन दोनों के परिवारों पर भी पड़ेगा। आशा है आज की नाटिका बोझिल संबंध का सामना कर रहे दंपतियों का मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका बोझिल संबंध।
नेहा, मैं क्लिनिक जा रहा हूँ।
क्लिनिक जा रहे हो या फिर उस नव्या से मिलने उसके घर या कहीं और जा रहे हो?
तुम्हारा दिमाग सही है? अब मैं अपने क्लिनिक भी अपना अस्पताल भी ना जाऊँ? शक करने की भी कोई हद होती है?
मुझे शक करने का मौका कौन देता है? तुम? अरे तुम्हारा यह बेसमय आना जाना, तुम्हारे नर्सिंग होम के स्टाफ की बातें मुझसे बहुत कुछ कह जाती हैं, समझे तुम?
तुम क्या समझती हो? क्या मरीज बोलकर बीमार होते हैं? अरे जब नर्सिंग होम से कॉल आएगा तो मुझे टाइम बेटाइम तो जाना ही पड़ेगा ना। हा? तुम बोलो तो डॉक्टरी छोड़कर घर बैठ जाता हूँ। फिर मैं कोई सर्जन नहीं हूँ, MD हूँ। मरीज सीरियस हो तो जाना ही पड़ता है।
अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, तुम किसी भी मरीज को देखने उसके घर नहीं जाते हो, सबको क्लिनिक पर ही बुलाते हो, फिर नव्या के बाप को देखने ही उसके घर क्यों जाते हो? क्योंकि नाम बाप का और देखना मिलना बेटी से।
क्योंकि नव्या का बाप मेरा पुराना पेशेंट है और मेरा अच्छा मित्र भी।
ये पुराने पेशेंट डॉक्टर के मित्र कब से होने लगे हैं? नव्या का बाप क्या तुम्हारे साथ पढ़ा है, खेला है, जो वह तुम्हारा मित्र है?
मक्खियों के भिनभिनाने से सिर्फ मिठाई गंदी ही होती है।
हाँ हाँ, अब तो उस 26 साल की जवान छोकरी के आगे मैं तो तुम्हें मक्खी ही लगूंगी। मुझे तुम्हारे और नव्या के प्रेम प्रसंग की सब खबर है। उसे महंगे महंगे गिफ्ट देते हो, क्या मुझे पता नहीं है? पता नहीं उस लड़की ने तुम में क्या देखा है।
तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी, अगर शक की कोई दवा होती तो तुम्हें जरूर दे देता।
अरे तुम्हारा बस चले तो तुम तो मुझे पॉइजन का इंजेक्शन दे दो, लेकिन क्या करें, तुम्हारा बस जो नहीं चलता।
नेहा आखिर तुम पढ़ी लिखी हो और कॉलेज में प्रोफेसर हो, यह अनपढ़ औरतों की तरह शक करना और झगड़ना क्या तुम्हें शोभा देता है?
क्यों, पढ़े लिखे होने का क्या यही मतलब है कि अपने साथ अन्याय होता हुआ देखकर भी चुप रह जाए? तुम मुझे बताओ विवेक, तुम भी पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, क्या अपनी पत्नी के होते हुए भी किसी जवान लड़की से प्रेम करना तुम्हें शोभा देता है?
सामने वाले पर दोष लगाकर अपने आप को निर्दोष साबित नहीं किया जा सकता, दोषी सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत होती है, प्रमाण की।
वाह डॉक्टर विवेक, नव्या के प्यार के चक्कर में तुम डॉक्टर से वकील भी बन गए हो, क्या बात है। लेकिन मैं यह सब कुछ चलने नहीं दूंगी। अब
क्या करोगी तुम? ज्यादा से ज्यादा तलाक ले लोगी, और क्या कर सकती हो तुम, ले लो तलाक।
आखिर दिल की हसरत तुम्हारी जबान पर आ ही गई ना। अरे मैं तुम्हारी तरह नहीं जो दो जवान होते बच्चों की परवाह ना करके तलाक ले लूं। मैं तुम्हारी तरह घर से लापरवाह नहीं हूं।
अरे घर की इतनी ही चिंता है तुम्हें तो घर में थोड़ी शांति भी रहने दिया करो, सारा घर सिर पर उठाए घूमती हो।
मैं कोई पागल नहीं हूँ।
हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, जबकि उसको मनोचिकित्सक की जरूरत होती है। तुम भी अपने दिमाग का इलाज करा लो।
तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारे किसी मनोचिकित्सक मित्र से ही मुझे पागल घोषित क्यों नहीं करवा देते?
मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है, तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो।
वो तो मैं करूँगी, तुम्हारे और मेरे घर वालों को इकट्ठा करके तुम्हारी करतूत बताऊंगी।
मतलब अपने ही हाथों अपने ही पति की इज्जत उछालोगी तुम?
जब पति ही अपने हाथों अपनी और घर परिवार की इज्जत सारे बाजार उछाल रहा है तो फिर पत्नी ही क्या करेगी? पति पत्नी का साथ तो देगी ना।
तुम जैसी औरत से और आशा भी क्या की जा सकती है?
मैं भी तुम जैसे रोमियो आदमी से और क्या आशा कर सकती हूँ?
तुमसे तो बात करना ही बेकार है।
हाँ हाँ, अब तुम्हें उस नव्या से बात करना जो अच्छा लगता है।
कुछ देर और यहाँ ठहरा तो दिमाग फट जाएगा, कम से कम क्लिनिक में शांति तो है।
हाँ हाँ, जाओ जाओ, वहाँ नव्या का फोन आते ही तुम्हें असीम शांति जो मिलेगी। किसी खुशी का इंतजार तो किया जा सकता है भैया, लेकिन दुखों के खत्म होने का इंतजार धीरे धीरे इंतजार करने वाले को ही खत्म करता रहता है।
तो फिर आप एक काम करिए, आपके और विवेक के बड़े बुजुर्गों को बिठाकर बात करिए, शायद कोई हल निकल आए।
आपका कहना बिल्कुल ठीक है भैया, सोचा तो मैंने भी ऐसा ही था, लेकिन मुझे लगता है कि विवेक इस बात से भी पीछे हटने वाले नहीं है। वे बहुत ही जिद्दी और कुछ भी कर गुजरने वाले इंसान है।
हाँ विवेक है तो ऐसा ही, तो फिर एक काम और किया जा सकता है भाभी, क्यों ना नव्या के घर वालों को यह बात बता दी जाए, इससे विवेक के घर आने से मना कर देंगे और नव्या पर भी नजर रखेंगे।
हाँ भैया, यह बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। हाँ यह करना ठीक रहेगा,
लेकिन आप तो जानती हैं कि विवेक गुस्से वाला है, गुस्से में वह कोई गलत कदम ना उठा ले।
हाँ आपकी यह बात भी सही है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था।
आप ऐसा करिए भाभी, कुछ दिन और रुक जाइए, शायद तब तक अपने आप कोई हल निकल आए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगर कोई हल नहीं निकलता है तो फिर हम नव्या के घर वालों से बात कर सकते हैं।
हाँ यही ठीक रहेगा, मैं जहाँ इतने दिन चुप रही कुछ दिन और सही, शायद मेरे सब्र का फल मुझे भी मीठा ही मिले।
अच्छा हुआ आपने खुद ही बुला लिया, मैं आपसे खुद ही मिलना चाह रही थी।
अरे तो फोन पर ही बात कर लेती तुम, कोई जरूरी बात है क्या?
हाँ बात बहुत जरूरी है, इसलिए फोन पर नहीं बता सकती थी।
हाँ बोलो नव्या, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो तुम?
मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि अब मैं आपसे नहीं मिलूंगी, और आप भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना।
नव्या ये तुम क्या कह रही हो नव्या, तुम जानती हो कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कह दो तुमने मुझसे मजाक किया है।
नहीं डॉक्टर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ।
मगर तुम ये सब क्यों कर रही हो?
मेरी मम्मी को मुझ पर शक हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझसे पूछा और मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाई।
मतलब तुमने तुम्हारी मम्मी को सब कुछ बता दिया?
हाँ, तब मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। बाद में मैंने भी महसूस किया कि सचमुच मैं अब तक गलत ही करती रही हूँ, इसलिए हमारे हक में अब यही अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं और मैं आपके परिवार की खुशियों को छीनने का कारण ना बनूं।
लेकिन नव्या तुम समझती क्यों?
कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिंदगी का सच समझ गई हूँ। गुड बाय डॉक्टर।
अरे नव्या मेरी बात तो चली गई। ऐसे बेमेल और बोझिल संबंध का यही अंत होता है। ऐसे ही संबंध किसी खुशहाल परिवार की खुशियां छीन लेते हैं, जैसे मेरा परिवार। ऐसे संबंध जब टूटते हैं तो मन पर एक बोझ बनकर हमेशा के लिए एक पीड़ा दे जाते हैं। सचमुच ऐसे संबंधों का अंत बड़ा दुखद होता है, ऐसे संबंध में कभी नहीं पड़ना चाहिए। नेहा मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ तुम्हें लौटा दूंगा। मैं आ रहा हूँ नेहा, मैं आ रहा हूँ। नव्या मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, आज तुमने सच्चाई से मेरा सामना करा दिया, शुक्रिया नव्या।
बोझिल संबंध। अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे दिव्या शूलिया, नलिनी गहलोत, विक्रम और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।